ओम शांति। एक बार एक हेलीकॉप्टर फेल हो गया। उसमें केवल 12 लोग थे और एक रस्सी से वो सब के सब लटक रहे थे। और कहानी कहती है कि वो रस्सी केवल 11 लोगों का भार उठा सकती थी। मौसम खराब था, वो जो लटके हुए लोग थे उनमें से 11 भाई थे और एक माता थी, तो कौन छोड़ देगा रस्सी और कूदेगा नीचे। तो माता ने कहा, बचपन से ही मुझे त्याग सिखाया गया। जब छोटी थी तो भाई को सब कुछ मिलता था, जब शादी हुई तो पति के लिए जीवन समर्पण था, बच्चे थे तो सारी उम्र बच्चों के लिए ही सब कुछ किया। इसके लिए आज भी आप सबके लिए मैं ये रस्सी छोड़ती हूं, मेरा जीवन वैसे ही समर्पण के लिए है। उसका ये जब स्पीच सब लोग सुनते हैं तो सबकी आंखों में पानी आ जाता है और सब लोग ताली बजाने लगते हैं। भारतीय स्त्री समर्पण का प्रतीक है। कितना आश्चर्य है कि भगवान जब धरा पर आया तो ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रख दिया। संसार में ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो किसी माता ने लिखा, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसकी संस्थापक कोई माता हो। सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे और उसमें लिखा, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। सन्यासियों ने त्याग कर दिया, कई कई धर्मों में स्त्री को कंप्लीट ह्यूमन बीइंग भी नहीं कहा जाता, हाफ। यहां तक कि सुकरात, सोक्रेटिस, उसने भी लिखा है कि स्त्रियां पुरुष से छोटी है। पुरुषों को 32 दांत है तो स्त्रियों को 2 दांत कम है, यहां तक भी लिखा उसने। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो जिन्हें सबने ठुकरा दिया था उनको ठाकुर बना दिया। तो जब हम बाबा के बने हैं और ये जीवन उसको दे दिया है, उस पतियों के पति को, तो हमें क्या करना है आज की इस भट्टी में? केवल सुनना नहीं, परंतु सुनते सुनते बीच में अपने आप को देखना है, अपने जीवन को देखना है। एक नजर अपने परिवार पर, एक नजर अपने संबंधों पर, एक नजर अपने उन हिसाब किताब पर जो हमारे ही किसी एक संस्कार के कारण चुकतू नहीं हो रहे। तो स्व निरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस, खुद को खुद बैठकर चेक करना, देखना। सुनते सुनते ही अपने जीवन पर एक नजर कि क्या वो है, कौन सी वो बातें हैं जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोका है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके संपूर्ण जिम्मेवार हम स्वयं हैं। यह भाव, और इसलिए जो कुछ बदलाव लाना है, जो कुछ परिवर्तन होगा, वो मेरे ही संकल्पों के द्वारा होगा। शुरुआत करेंगे सीता की इस कहानी से, जो गीत सुना, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। सीता शोक वाटिका में क्यों पहुंच गई, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो कारण थे जिससे आत्मा रूपी सीता अशोक वाटिका से शोक वाटिका में पहुंच जाती है, जिसमें ब्राह्मण आत्मा जो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर चल रही है और अचानक एक दिन किसी न किसी एक विकार के, एक कमजोरी के वश हो जाती है और दुखी हो जाती है और उदास हो जाती है और एक बंदीगृह में बंद जाती है। ऐसे सात कारण हैं जिस वजह से सीता शोक वाटिका में पहुंच गई। सबसे पहला, उस सुनहरे मृग का आकर्षण। देखा उसको और आकर्षित हुई। लास्ट संडे की मुरली में था, जो आकर्षित होते हैं वो हर्षित नहीं रह सकते। दादी जानकी 40 साल से भी ज्यादा विदेश में रही, परंतु पश्चिमी प्रभाव से मुक्त रही। उम्र थी जब विदेश की यात्रा की। उस समय लोग रिटायर होने की सोचते हैं, यहां ना तो रिटायर्ड और ना ही टायर्ड। संसार में आकर्षण बहुत है, परंतु जो ईश्वरीय नशे में रहते हैं, प्रभु प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, अपनी धारणाओं पर अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं, उनके लिए संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता। कौन सा वो आकर्षण है? कोई संबंध है, कोई वस्तु है, कोई वैभव है, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति है, क्या है? कुछ तो है, कोई साधन है, कोई लगाओ। स्वयं स्वयं को देखना है कि मेरे जीवन में ऐसा वो कौन सा आकर्षण है जिसको मैंने पकड़ के रखा है और जो दुख का कारण है। मेरा दुख मैंने स्वयं निर्माण किया है। आकर्षण जिन आंखों में भगवान समाया है वो संसार में कहीं नहीं डूब सकती। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, जिस मन में उसकी याद है उन आंखों में वो समाया है, और वह आंखें संसार के किसी भी आकर्षण में नहीं आ सकती। चार साल के बाद जब दादी विदेश से लौटी थी, पुराने भाई बहन बताते हैं वही साड़ी थी जो जाते समय पहनी थी। उससे पता चलता था कि वहां का जीवन कैसा तपस्वी रहा होगा, कैसा त्यागी रहा होगा। सेवा कुछ खास हुई नहीं थी उस समय, चार साल में। दादी जानकी पर किसी ने एक किताब लिखी है, एक विदेश की बहन ने, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस किताब का नाम है, जिसकी प्रस्तावना में दादी के ही अक्षरों में चार लाइनें लिखी है। जो उस लेखिका ने वहां कोट की, लिखा है, यदि एक अनपढ़ नारी, एक अनपढ़ स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसको अंग्रेजी भाषा भी नहीं पता, एक ऐसी स्त्री जो कभी भारत से बाहर नहीं गई थी, एक ऐसी स्त्री जिसे जिसके पास कोई उच्च शिक्षा नहीं, अगर वह स्त्री विदेश में और उसमें भी लंदन में अपना एक परमानेंट घर बना सकती है, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो कि संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा अप्रभावित है, कोई नहीं खींचता उसे एक उसके अतिरिक्त। 80 वर्ष की तपस्या, मान सम्मान और स्थिति सब कुछ प्राप्त है, परंतु उस मान सम्मान के पीछे अविरत लंबे समय की तपस्या है। यदि हम शोक वाटिका में हैं, यदि जीवन में अब भी दुख है, यदि जीवन में मन में अभी भी बीच बीच में उदासी और दुख का अनुभव होता है, तो जरूर कोई आकर्षण है। वो कौन समृग है जिसने मुझे खींचा है, पकड़ा है, एक दूसरा इच्छा, मुझे चाहिए। वो मृग पता है वो झूठा है, सोने का मृग कभी होता नहीं, पता है इस संबंध से कुछ मिलने वाला नहीं, पर भी उसको जबरदस्ती निभा रहे हैं क्योंकि अल्पकाल का सुख देता है। एक परमात्मा संबंध के आगे संसार के सभी संबंध व्यर्थ है। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, भगवान उवाच है। कल की मुरली में एक शब्द था शरणागति। शरणागति बहुत गहरा शब्द है। भारत में जितने धर्म हैं, उसमें भी हिंदू धर्म में जितने सांप्रदाय हैं, उन्होंने शरणागति के अलग अलग अर्थ लिए हैं। वैष्णवों की शरणागति अलग, शाक्तों की शरणागति अलग, शैवों की शरणागति अलग, परंतु सब में कुछ कुछ बातें कहीं ने किसी ने 8 बातें बताई, किसी ने 9 बातें बताई, किसी ने कहा ये होगा तो शरणागति होगी। शरणागति अर्थात संपूर्ण समर्पण, शरणागति अर्थात संपूर्ण वह संकल्प मन में लाना, प्रतिकूलस्य संकलम, जो प्रतिकूल है। शरणागति अर्थात एक उसी को सहारा बनाना, शरणागति अर्थात केवल एक उसी की पालना में पलना, एक वही सर्वस्व है, एक वही सब कुछ है, अगर वो नहीं तो हम नहीं। इतना समर्पण, वो छत्र है, उसकी पालना में है, आत्मनिवेदनम समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। यदि ऐसा भाव है तो फिर संसार की कोई इच्छा, संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही व्यक्ति को इतनी भगाती है, दौड़ाती है। हमें याद है हम जब 16 साल के थे, 16 या 17 या उससे भी पहले शायद, फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे MBBS की एडमिशन के लिए, तब हमने अपनी डायरी में लिखा था कि आज मैंने टुडे आई सॉ 3 ओशंस, आज मैं यहां 3 समुंदर देख रहा हूं। पहला पानी का समुंदर, दूसरा मनुष्यों का समुंदर, और तीसरा भौतिकता का समुंदर। आश्चर्य हुआ था जब हम पहली बार आए थे और देखा ये लोग जा कहां रहे हैं, इन्हें चाहिए क्या, क्यों भाग रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई आर दे रनिंग। हमने अपनी डायरी में ये प्रश्न लिखकर छोड़ दिया था। क्यों मैं भाग रहा हूं, लक्ष्य क्या है। फिर मुझ में और उनमें अंतर क्या, वो भी भाग रहे और मैं भी भाग रहा हूं। इच्छाओं का स्वभाव है अतृप्ति, सागर की लहरों की तरह है, आती ही जाती है, आती ही जाती है, एक पूरी होती है दूसरी, दूसरी पूरी होती है तीसरी, कभी भी समाप्त नहीं होती। और मनुष्य का जीवन इन इच्छाओं को पूर्ण करने में चला जाता है। तो दूसरा इच्छा, तीसरा जिद, इंसिस्टेंस, मुझे चाहिए ही, जुनून सवार हो गया, नहीं अगर मिला तो बेचैनी। उस चाहिए के पीछे अब मैं काम कर रहा है, उसके पीछे नीड कम हो गई है, परंतु मुझे चाहिए मतलब मुझे चाहिए, अब इस जिद को पूरी करना है। और यदि वो कोई व्यक्ति अगर चाहिए है, अगर वो नहीं मिला तो उसे भी समाप्त करने में व्यक्ति नहीं रुकता। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उससे ही सबसे ज्यादा घृणा भी करने लगता है। अगर वो कोई वस्तु है तो सारा जीवन दांव पर लगा देता है, फिर अमृत वेला एक तरफ और फिर मुरली चिंतन एक तरफ, क्योंकि बीच में कोई एक ऐसी जिद आ गई, उसके चलते हर दिन हर रात सोने को लेट होता है और हर दिन अमृत वेला लेट, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, नियमित नहीं हो रहा है। सुबह की मुरली मेडिटेशन कब करो, अमृत वेला करो तो मजा आएगा, नशा चढ़ेगा। और सुबह ही आत्मा नहीं भरती तो सारे दिन भर रिक्त हो जाती है। चौथा माया की आवाज को राम की आवाज समझना, डिसेप्शन, धोखा। राम जी तो गए और मार भी दिया उस मारीच को, परंतु वो मारीच मरते समय राम लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। वो आवाज माया की थी परंतु किसकी लगी? राम की लगी। कितनी आवाजें दिन भर हमें आती है, हम समझते हैं ये श्रीमत है, परंतु है कुछ और, आवाज किसी और की है और उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद अविश्वास, क्या राम में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसे किसी और की आवश्यकता है? उसी का पति है, अपने पति पर भी अविश्वास, संदेह किया कि शायद वो संकट में है, लक्ष्मण जाओ। जब वो साथी है तो डर कैसा, कहीं पर भी मैं चला जाऊं मुझे किसी का डर नहीं। गीता में 16वें अध्याय में योगियों के जो लक्षण है उसमें सबसे पहला लक्षण बताया अभयम, अभय। योगी निर्भय होता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है हर समय हर पल उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, मैं कहीं पर भी अकेला नहीं हूं, किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में, न स्थान न समय न परिस्थिति, हर समय वो मेरे साथ है। ये भाव चेतना को अभेदान दे देती है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलते हुए सड़कों पर वो साथ है, ट्रेन में, गाड़ी में, घर में, बोलते हुए सुनते हुए परमात्मा साथ का अनुभव, नहीं तो भय रहता है। किसी किसी को अंधेरे का भय रहता है, भविष्य का भय होता है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए कुछ नहीं होगा। वो साथ है, निश्चय। लास्ट संडे की मुरली, स्वयं में, बाप में और ज्ञान में निश्चय, वो विजयी है। माया कहां से आती है वो रास्ता देख लो। स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते, अगर रहते भी है तो जरूर कोई दरवाजा कोई खिड़की खुली है, इसलिए मेहनत लगती है। कल की मुरली, तो साथ के अभ्यास को बढ़ाना है। मोहम्मद पैगंबर के विषय में कहा जाता है कि जब वो रेगिस्तान से चलते थे तो ऊपर बादल उनके ऊपर चलते थे, उनको छाया देते थे। जहां जहां वो जाते थे उस कड़ी तपती धूप में, रेगिस्तान में, ऊपर ऊपर बादल चलते थे। हम ये देखे समझे सोचे कि जहां मैं हूं वो ऊपर छत्र छाया है और हर परिस्थिति में उसका अनुभव, कठिन से कठिन परिस्थिति में साथ वो है। अब विरोध ये है, शारीरिक बीमारी है कोई, लोग साथी नहीं, परंतु भगवान साथ है, यह भाव। उसके बाद है रावण को पहचान नहीं सकी, किस भेष में आया था वो? साधु के। और माया हमेशा इसी रूप में आती है, और ब्राह्मणों के लिए तो श्वेत वस्त्र और बैच लगा कर आती है। तब ये नहीं समझ में आता है कि यही माया है जो तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ से दूर करे, उसे अपना शत्रु समझो, साकार मुरली में आया है। जो ब्राह्मण आत्मा हमें अपने ही मार्ग से भटका रही है, उससे किनारा कर लो। ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा हिसाब किताब ब्राह्मण परिवार में ही है, यहीं सबसे ज्यादा पेपर आएंगे। इसके लिए पहचानना, ये रावण है, रावण का ही रूप है। और लास्ट क्या कर दिया सीता ने? लक्ष्मण रेखा पार कर ली, मर्यादाओं की रेखा पार कर ली। कुछ दिन पहले वरदान था, मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहो तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, सेफ रहेंगे, मुश्किल अनुभव नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम मुख्य रूप से ब्राह्मण जीवन की ऐसी 26 मर्यादाएं क्या क्या है सब जानते हैं, परंतु मर्यादाओं का रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी मर्यादा की लकीर को सीता ने पार किया और सीधा शोक वाटिका, दुख की वाटिका में पहुंच गई। हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें पता नहीं था कि ये मर्यादा है, ये श्रीमत है। कोई पुलिस वाला छोड़ देता है क्या? अगर हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं और उसने पकड़ा और हम कहे हमें तो पता नहीं था, हम नए हैं इस शहर में, तो वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है तुम नए हो, जाओ जाओ जाओ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। हम ये नहीं कह सकेंगे कि मुझे पता नहीं था। इसके लिए पता हो भी और उनका रिविजन हो, सुबह की मुरली में बाबा ने कहा जो ज्ञान देने वाला है उसके साथ साथ ज्ञान सागर के साथ साथ किसको याद करो? ज्ञान धन को भी याद करो, ज्ञान धन का चिंतन करो। ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह उठते हैं और चिंतन करते हैं, कैसा ये बगीचा है, किसने ये बगिया बनाई, कैसे पहले छोटा था और कैसे अब विस्तार हुआ। ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे चिंतन करो तो मजा आएगा। सुबह है ना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना और उसमें खोए रहना ज्ञान में। क्योंकि सारे दिन भर में क्या कहा, सुबह क्या रहता है? धंधा धोरी, खेलना कूदना, खाना पीना, लफड़े, अफेयर्स। बाबा ने तो सीधा कह दिया है आज सुबह मुरली में, दिन में मेडिटेशन हो नहीं सकता, मेडिटेशन तुमको करना है तो सुबह ध्यान, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्। तुरीयावस्था, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति से परे, द फोर्थ स्टेज जिसको कहा है। देह नीचे रह जाए, स्वप्न से भी ऊपर, जागृत से ऊपर और सुषुप्ति से भी ऊपर, एक चौथी अवस्था है, चौथा आयाम है चेतना का, द फोर्थ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके लिए कोई नाम नहीं है, इसके लिए उन्होंने नाम रखा द फोर्थ, अर्थात तुरिया। सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरिय, सच्चा सुख कहां है? प्रातः स्मरामि, अमृत वेले, सुबह सुबह। तो ऐसे हम 26 धारणाएं, मर्यादाएं, नियम, कानून, इनमें से एक भी यदि हम पालन नहीं करते तो जरूर दुख होगा, क्योंकि लकीर को क्रॉस किया। सबसे पहला, सब जानते हैं, अमृत वेला। पिछले एक मास में सब लोग आगे देखना, आजू बाजू कोई नहीं देखेगा, सब आगे देखेंगे। पिछले एक मास में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे। धर्मराज की सभा है, आजू बाजू नहीं देखेगा, अपने बाजू वालों को। पिछले नीचे, पिछले 15 दिन में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया नीचे। पिछले एक सप्ताह में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, वो पहले वाले भी इसमें आएंगे। और आज सुबह, पता है आज भट्टी है, परंतु वो नहीं उठाएंगे हाथ, मन में उठा देंगे। सारे खजानों की जो चाबी है अमृत वेला है, सारे प्रश्नों का जो उत्तर है अमृत वेला है। ब्रह्मा बाबा ने 33 साल में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। क्या था वो? और दादी है हमारी, जो नींद में भी दादी को उठाओ तो कहती है नहीं नहीं, मैं अभी मीटिंग में हूं, मैं अभी टोली दे रही हूं। हंसा बहन ने अपने अनुभवों में लिखा है कि दादी को कभी उठाओ तो दादी कहती है अभी रुको, मैं टोली दे रही हूं। स्वप्न में भी टोली देना चालू है। सबसे पहले इस धारणा को मजबूत करना है, और उसके लिए यज्ञ की एक किताब है, अमृत वेला, देखी है सबने? छोटी सी किताब है। तो जिन्होंने एक महीने में कई बार अमृत वेला मिस कर दिया और सोच रहे हैं कि हमने बहुत कम खोया है, खोया बहुत है पर हम सोच रहे हैं हमने थोड़ा कम ही खोया है, क्योंकि मुरली क्लास में तो हम थे और डायरी में मुरली लिखी है, उनको आज से यदि वो किताब है तो वो पढ़ना चालू करना है। कईयों ने पढ़ चुके हैं परंतु फिर भी रिवाइज करना है। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह अमृत वेले के बाद उसको पढ़ना है, रात को सोने से पहले उस किताब को पढ़ना है। बाकी कितना भी ज्ञान सुनो, कितनी भी क्लासेस अटेंड करो, मोबाइल इंटरनेट व्हाट्सएप सबसे सुनो, अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अनुभव का समय अमृत वेला है। सारा संसार सोया पड़ा है और हम भगवान से मिलन मना रहे हैं, कैसा आनंद है! एक संतुष्टता का भाव कि हम श्रीमत पर है, चाहे कितना भी लेट हो जाए। एक बार याद है, हम बाबा की कुटिया में थे, लगभग 3 बजे का समय था सुबह का, और हॉस्पिटल से कॉल आया, क्योंकि इमरजेंसीज तो दिन रात चालू रहती है 24 आवर्स। जो जूनियर डॉक्टर्स है वो मैसेजेस करते हैं कि इस तरह का पेशेंट आया है, तो हमने उसे बताया अभी ये करो। परंतु वापस जो दूसरा मैसेज आया उसे ये लग रहा था कि पेशेंट बहुत सीरियस है, और हम उस समय एक ऐसी अशरीरी अवस्था में थे कि जैसे ये संसार है ही नहीं, केवल आत्मा है। परंतु जब कर्तव्य पुकारे तो सब कुछ कौन है, तो हम उठे और हॉस्पिटल पहुंचे। देखा तो वो कोई टूरिस्ट थे, आए थे, और पेशेंट बहुत ही बैड था। उसको इमीडिएटली वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, उसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स करनी पड़ी, सेंट्रल लाइन और ये वो जो भी क्रिटिकल आईसीयू की प्रोसीजर्स होती है वो सब कुछ किया। आधे घंटे में बाहर आए और रिश्तेदार रिलेटिव्स बहुत सारे थे, उनसे बात किया कि ये सब किया है, अभी देखते हैं, और हम वहां से निकल गए। और ये सब हमने ऐसे किया कि जैसे अदरवाइज ये सब करते तो इसमें बहुत आवाज करना पड़ता है, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि इमरजेंसी है। पर उस समय कुछ भी नहीं, हम मौन में ही थे, सब कुछ किया, रिलेटिव से बोला और हम निकल गए। और जो योग चालू था वो चालू उधर पहुंचकर, फिर योग हुआ, अमृत वेला हुआ, और फिर मुरली क्लास और वो सब हुआ। और वो सब करके जब हम हॉस्पिटल 9:30 बजे तक आ रहे थे, तब तक हम ये भी भूल गए थे वो क्या था, कुछ किया भी था। पहली बार एक अनुभव हुआ निष्काम कर्म का, न्यूट्रल वर्क, अकाम, कुछ पता ही नहीं, उसकी कोई स्मृति नहीं। और वो हम जैसे पहुंचे वो रिलेटिव्स आके एकदम पैरों पे गिरने लगे, डॉक्टर साहब आपने बचा दिया। हमने हमको पहचान में भी नहीं आया ये कौन है। फिर अंदर जाके देखा पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस थे, वेंटिलेटर पर ही थे। और फिर 2-3 दिन के बाद ट्यूब आउट हुई, वार्ड में शिफ्ट हुए और वो पेशेंट ठीक होकर गया। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिसमें हम, ये एक उदाहरण है, उस दिन हमने ये रियलाइज किया कि ये काम इमरजेंसी मैनेजमेंट भी अशरीरी अवस्था में किया जा सकता है। ऐसा इमरजेंसी कि जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स देने पड़ते हैं स्टाफ को, हर कर्म उस अवस्था में हो, तो सबसे पहली धारणा श्रीमत मर्यादा अमृत वेला, वही आत्मा शक्ति से भरती है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी और देहधारी का प्यार तुमको नहीं खींचेगा। फिर और एक मुरली में बाबा के महावाक्य है, 12 दिसंबर 1969, देह का प्यार तुम्हें पश्चाताप में लाएगा। जहां अमृत वेला ही मिस हो रहा है, फिर कितनी भी ज्ञान पढ़ो सुनो जो कुछ करो, धारणाएं नहीं हो पाती। सुबह तो जिन्होंने भी मिस किया कर रहे हैं, उस किताब को लेना है। और एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क, उसको होमवर्क के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, सेल्फ स्टडी के रूप में उस किताब को पढ़ना है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब पता चलेगा उसके ये फायदे हैं और ये बहुत विस्तार से उस किताब में सब कुछ लिखा है, तब कहीं जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी धारणा है मर्यादा ब्रह्मचर्य, ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य, सुबह का वरदान क्या था? वरदान क्या था? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। संसार में जो आत्माएं हैं और संसार में जो पर्सनैलिटीज है वो क्या करती है? देह की तरफ आकर्षित करती है। सारा खेल देह का है, उधर देह को सजाना, देह का मेकअप करना, ड्रेस, सब कुछ देह के लिए है। और वो जो कर रहे हैं उनसे जाके पूछो उनके जीवन में क्या है फ्रस्ट्रेशन, कि अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कैसा उनका जीवन बीता एक नजर उन, वो यदि खुद अपने जीवन की तरफ देखे, संसार के सो कॉल्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, सूक्ष्म बोझ है दूसरी आत्माओं को देहभान में लाने का। विकारों में प्रवृत्त करने का, हमें देखकर किसी के मन में विकार उत्पन्न ना हो। विनोबा भावे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो एक महिला गजरा लगा के थी। उन्होंने पूछा, ये क्यों लगाया है, क्या ये तुमको दिखता है? उसने कहा, नहीं। मतलब किसके लिए लगाया? फिर दूसरे देखे, तारीफ करे, पूछे, ये कहां से लिया, कहां मिलता है, एक हमारे लिए भी लाना। कंप्लीट प्यूरिटी भगवान को पसंद है, अनटच्ड प्यूरिटी। इस शरीर को किसी पुरुष का स्पर्श ना हो, ऐसा ब्रह्मचर्य। आप सबने सुना भी होगा और जगदीश भाई जी सुनाया करते थे, एक गांव की ग्वालिन की कहानी। पानी भर रही है, वहां से एक नवयुवक आता है, कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो स्त्री कहती है, पानी मैं दूंगी पर एक शर्त है, अंग से अंग न लगे। वो कहता है, हां वादा करता हूं, पर मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूं। और वो हाथ ऊपर करता है और वो अपने घाघर से पानी डालती है और वो पीता है, धन्यवाद करता है और चला जाता है। कालांतर में दोनों का विवाह हो जाता है और उनके मां बाप दोनों का विवाह तय करते हैं उनको बिना बताए कि किसके साथ शादी हो रही है तुम्हारी। शादी हो जाती है, दोनों को पता नहीं किसके साथ शादी हुई। और पहली ही मुलाकात दोनों आमने सामने आते हैं शादी के बाद, और वो कहती है, अपना वायदा याद रखना। इंटैक्ट, अनटच्ड, अखंड ब्रह्मचर्य। सब कुछ चला जाए, प्योरिटी ना जाए। जितना हम उसका महत्व रखेंगे, दूसरे भी स्वतः रखेंगे। इस पवित्रता की शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी संसार में और कोई शक्ति नहीं। तीसरी मर्यादा सी, सेंटर एटमॉस्फियर, सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली बनाना हरेक का व्यक्तिगत कर्तव्य है। सेंटर के वातावरण को किसी भी रीति से दूषित करना, संकल्पों के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्मों के द्वारा, क्या कहेंगे। एक नया नया भाई आया कोर्स करने के लिए सेंटर पर, और देखा कि वहां के जो स्टूडेंट्स थे आपस में लड़ाई हो रही थी। क्या हो रही थी? लड़ाई हो रही थी। क्लास के बाद आया होगा मुरली, क्लास के बाद, और वो लड़ रहे थे शब्दों के द्वारा। और वो आया था शांति प्राप्त करने, कोर्स करने। वहीं उसका कोर्स पूरा हो गया और वहीं लौट कर चला गया। उस आत्मा को वंचित कर दिया। अब ये मत कहना उसका पार्ट नहीं था और ड्रामा में था। हमें सेवा केंद्र के वातावरण को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इसका अर्थ वहां कोई व्यर्थ की बातें नहीं ले जानी है। तीर्थ है, भगवान का तीर्थ है। कोई भी ऐसा संकल्प, व्यर्थ का संकल्प मन में ना हो, किसी के विरुद्ध ना हो। और जो वहां रहते हैं, कौन रहते हैं वहां पर? वहां वही रहती है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अपने जीवन को और अपने यौवन को परमात्म यज्ञ वेदिका में जिन्होंने अर्पण कर दिया, वो साधारण आत्माएं नहीं है। चाहती तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी संसार में। इसके लिए उनके प्रति व्यर्थ, निगेटिव, किसी के भी प्रति कोई ऐसी बातें, संसार की बातें। एक भाई ने हमको कहा था कुछ दिन पहले कि मैं क्या करूं, सेंटर पर मुरली क्लास हो जाती है, फिर वो जो भाई लोग हैं वो लोग वहां बैठते हैं और पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं रोज। महातीर्थ है, तीर्थ स्थान है, उसे हमें दूषित नहीं करना है। तो तीसरी मर्यादा, नो वर्ल्डली टॉक्स, नो वर्ल्डली बिजनेस, लौकिक संसार उधर। डी फॉर ड्रेस कोड। दूर से हमें कोई देखे तो पता चले ये ब्रह्म कुमारी से है। ये ड्रेस ही बहुत सेवा करेगी, ये बैच ही बहुत सेवा करता है। शास्त्र है बैच, बाबा ने कहा है। मेहनत बहुत है पर ये व्हाइट पहनने में और इस मौसम में, परिणाम भी बहुत बड़ा है। और ये हमको याद दिलाएगा कि हम वो नहीं, वो अलग हम अलग। सन्यासी के वस्त्र उसे याद दिलाते हैं मैं विरक्त हूं, वैरागी हूं। कल की मुरली में भारत कभी योगी था अब भोगी है, पतित है, भारत के लिए कहा था बाबा ने। हमारे वस्त्र ऐसा ना हो कि भोगी हम दिखे, हमारे वस्त्र ऐसे ना हो कि कोई दूसरा हमारी देह की ओर आकर्षित हो जाए। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था, पारसी स्त्रियों के लिए गोरी है, सुंदर दिखती है, जाली लगा लो काली अपने मुंह के ऊपर। सुनिए मुरली, आएगी कभी तो सुनना। ऐसी प्यूरिटी की पर्सनालिटी हो, कोई देखे तो देवी नजर आए। हिसार सेंटर के बहन जी ने अपना एक अनुभव लिखा है। कि जब वो शुरू शुरू में सेवाएं चालू थी दूर दूर जाते थे गीता पाठशालाओं में सेवा करने, रात लेट हो जाता था। और एक बार इतनी लेट हो गया कि कुछ भी नहीं था जाने के लिए, और वो सड़क पर खड़े थे और कोई ऑटो रिक्शा कुछ नहीं, ट्रक आया एक, 11-12 बज गए थे लगभग, और कोई नहीं था वहां। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की उसको, उस भाई को, ड्राइवर और पीछे कुछ और भाई थे, तो उन्होंने कहा हाँ चलो हम आपको छोड़ देते, और वो ट्रक में बैठ गए। ट्रक चालू हुआ और जाते जाते ड्राइवर का मन में कुसंकल्प आने लगे। उसने जहां जाना था वहां मोड़कर कहीं और लेके गया ट्रक। और जैसे ही इस बहन को पता चला, अभी भी बहन जी है वहां पर, एकदम से उन्होंने देवी रूप धारण किया, मैं शिव शक्ति हूं, महाकाली हूं, दुर्गा हूं, और उससे पूछा और उससे कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूं, और उसे परिचय दिया मैं शिव शक्ति हूं। और वो ड्राइवर एकदम से चौंका और रुका, और पता नहीं उसको क्या हुआ, वो सीधा चरणों में आके गिर गया और माफी मांगने लगा। और फिर रात को 12 बजे के आसपास या उससे भी ज्यादा समय हो गया था, उन्हें सेंटर पर पहुंचा दिया। हमारा ड्रेस कोड बाबा ने दिया है, ऐसा ना हो कि किसी के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो कि हमारा इतना अच्छा और उनके पास कुछ नहीं, ऐसा ना हो कि हमारा देह की ओर कोई आकर्षित हो, और ऐसा ना हो कि जिससे ये लगे हम भोगी है, वैरागी हो, तपस्वी है। चल रहे हैं तो जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है सड़क से। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है, 100 बगुलों के बीच तुम हंस डोलते हो, ऐसे देखो जैसे हंस डोल रहा है 100 बगुलों के बीच। ABCDE ई से ईटिंग या कहो फूड, किस पैसे से भोजन आ रहा है, भोजन कैसा है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, किस अवस्था में बनाया जा रहा है और किस अवस्था में खाया जा रहा है, चारों ही बातें महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी याद में बना रहे हैं, परंतु यदि किसी का शोषण हो रहा है और 2 नंबर की वो कमाई है, तो क्या स्थिति योग युक्त होगी। एक अव्यक्त संदेश है जिसमें बाबा ने कहा था दादी गुलजार के द्वारा, यदि भोजन याद में बनाया जाए और याद में खाया जाए तो 50% प्यूरिटी ऐसी ही अचीव हो जाएगी, 50% प्यूरिटी। अभी आप सबसे प्रश्न है कि आप में से कितनी माताएं रोज भोग लगाती है, और बाकी जिन्होंने नहीं उठाया वो शिव बाबा को भूखा रख देती है। 24 घंटे में एक बार हरेक को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयश्यति, पत्र पुष्प या फल कुछ भी मुझे दो, अनन्य भाव से दो, प्रभु जो है वो भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। मैं वहां नहीं जाता, मैं गरीबों मैं साहूकारों की महफिल में नहीं जाता जहां 56 प्रकार के भोग है, मैं गरीबों की महफिल में जाता हूं जहां पर सूखी रोटी है। साकार महावाक्य है बाबा के। क्या हम दे रहे हैं, किस भाव से दे रहे हैं, जो भी हम बनाए सबसे पहले उसे दिया जाए तो वो भोजन शुद्ध होगा और जो वो भोजन खाएगा उसका हृदय शुद्ध होगा, हार्ट प्यूरिफिकेशन। यदि घर के लोग ज्ञान में नहीं है तो जरूर भोजन हमने याद में इतना नहीं बना रहे हैं। गंगे दादी के लिए बाबा ने एक बार कहा था, कोई एक बात हुई थी यूपी में और वो बात दादी ने बाबा से नहीं बताई और खुद कुछ डिसीजन लिया या इस तरह का कुछ हुआ, तो बाबा ने कहा था पता नहीं उस समय किस पतित के हाथ का खाया था जो ये काम किया। क्या हम खा रहे हैं, किसके हाथ का खा रहे हैं? किसकी याद में बना रहे हैं, देहधारी या निराकार? तो सबसे पहला तो भोग लगाना, याद में बनाना। जो नहीं करते हैं वो आज से इस काम को चालू करेंगे। और विधि पूर्वक एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि बस भोग लगा दो हो गया और चलो काम पूरा। विधि पूर्वक, विधि से सिद्धि, उसी स्वच्छता के साथ। किचन कैसा है, दादी जान की कहती है कि योगी अर्थात किसी के भी घर जाते थे विदेश में, सबसे पहले किचन देखने जाते थे, किचन कैसा रखा है। भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय कितना मौन में बन रहा है या बर्तनों की आवाज हो रही है बहुत ज्यादा। भोजन खा के हो गया, बर्तन वैसे ही रखे हैं रात भर, रोते हैं वो बर्तन, ऐसे कहा जाता है, कहावत है। अगर उन्हें स्वच्छ नहीं रखा गया तो, धो के नहीं रखा जाए तो वो रात भर रोते रहते हैं। संपूर्ण प्यूरिटी से भोजन बनाना है, प्यूरिटी उसमें भरनी है ताकि कोई उसको खाए जो विरोधी है वो सहयोगी बन जाए। पुरुष के हृदय का मार्ग कहां से चालू होता है, पेट से। किसी को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से है। चाहे कोई भी हो, भोजन अच्छा दो तो खुश हो ही जाएगा। कई लोग टोलियों की वजह से ज्ञान में आए हैं, गुरुवार के भोग के वजह से ज्ञान में आए हैं। ज्ञान तो बहुत बाद में समझ में आया, प्यार ही पहले खींचा, प्यार नहीं खींचा तो। और एक जो ज्ञान छोड़ चुके हैं, पहले थे अब नहीं है किसी भी कारण से, उनकी भी सेवा करनी है, भोग का जो भोजन है उन तक पहुंचाकर, यदि वो संबंध संपर्क में है तो। ये एक सूक्ष्म सेवा हर एक को करनी है, स्थूल सूक्ष्म कहो जो भी, क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो बहुत आ रहे हैं और बहुत आएंगे, परंतु सबसे बड़ी सेवा ये भी है कि जो है वो रहे और जो छोड़कर चले गए डिस्टर्ब होकर उनको वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे, भोग कर और माफी वगैरह मांग लो थोड़ी सी, यदि हमारी वजह से वो गए हैं। उसके बाद एफ, फैमिली। ये जो परिवार है ईश्वरीय परिवार है, इसको भूलना नहीं है। इस परिवार में स्नेह हो, संस्कार मिलन की रास हो, टकराव ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, दुश्मनी ना हो, रिवेंज ना हो, इसने हमारे साथ ये किया हम ये करेंगे। प्रभु परिवार है। एक सूफी फकीर ने लिखा है, वो किसी गांव में जाता है जुनेद, और एक जगह रहता है, उसका जो पड़ोसी होता है इतना उसको तंग करता है, इतना तंग करता है, कभी कचरा फेंक देता है, कभी कुछ करता है, कुछ करता है। तो वो नमाज पढ़ते समय कहता है, हे प्रभु, मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं मांगा, पर आज पहली बार मांगता हूं, इसका कुछ कर। इसने जीना परेशान, जीवन नरक बना रहा है ये। मैं कुछ भी नहीं करता और ये दिन रात मुझे कुछ ना कुछ करते रहता है, इसको बदल दे या इसको यहां से कहीं भेज दे। तो स्वप्न में वो देखता है अल्लाह उससे बात कर रहे हैं और वो कहते हैं, मैं 40 साल से इसको सहन कर रहा हूं, तू 4 दिन में थक गया? चुना किसने है इस परिवार की एक एक आत्मा को? हमने चुना है? उसने चुना है। चुनने वाला मूर्ख तो नहीं है ना? जरूर कुछ तो देखा होगा, कुछ तो होगा इनमें, इसलिए तो चुना। कहां कहां से पकड़ के लाए हैं बाबा ने एक एक आत्मा को, खिंच खिंच के लाया है। आई हैव चोजन यू, यू हैव नॉट चोजन मी। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। तो उसका चुनाव गलत नहीं हो सकता इस परिवार में प्यार। उसके बाद में जी, जी अर्थात गिविंग हैप्पीनेस, खुशी देना, ब्लेसिंग दुआएं देना, शुभ भावना शुभ कामना देना हर एक को जो भी आ जाए हमारे सामने। उसके बाद में एच, एच अर्थात होली कंपनी सत्संग, एच अर्थात होली कंपनी, निरंतर सत्संग में रहना है, कभी भी कुसंग में नहीं चले जाना, ज्ञानियों के संग में रहना, तीव्र पुरुषार्थियों के संग में रहना, महान आत्माओं के संग में रहना। यदि वो शारीरिक रूप से समीप नहीं है, ऑडियो आवाज किताबें इनके माध्यम से, क्योंकि नीचे आत्मा को जो गिराती है वो कुसंग गिराता है। हम साधक हैं। आज की मुरली में, सुबह की मुरली में बाबा ने कहा, संसार में वो लोग जो साधना करते हैं अयथार्थ साधना है, सच्ची साधना तुम्हें बाप सिखलाते हैं। रिलीजियस माइंडेड वास्तव में हम ही है। उसके बाद में आए, आए अर्थात इनकल्केट अर्थात धारण करना दिव्य गुणों को, वर्च्यूज। बार बार ये देखते रहना मुझ में कौन सा दिव्य गुण अब कम है। डिसिप्लिन है, ओबीडियंस है, साइलेंस है। उसके बाद में जे, जे अर्थात जर्नी टू मधुबन, जर्नी टू मधुबन, मधुबन में जाने की जो यात्रा है वो हम किस तरह से जाते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी पहचान है, हम तो सेंटर के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं, हमारी डायरेक्ट पहुंच है उधर, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सबको हम जानते हैं वहां पर, सब डिपार्टमेंट में हमारी बहुत पहचान है। इस सबको बाईपास करके चले जाना, अनुभव भी बाईपास हो जाएगा। इतने सस्ते में भगवान नहीं मिलेगा। पहुंच तो जाएगा शरीर पर, अनुभव नहीं पहुंच पाएगा मन तक। यज्ञ के जो नियम है उसमें एक नियम है विजिट जर्नी टू मधुबन, कैसे हम जाते हैं वहां और वहां जाकर करते क्या है। यहां से बाबा से मिलन मनाने मधुबन में गए, मधुबन में पहुंचे और वहां पर परचिंतन और परदर्शन, मधुबन निवासी ऐसा करते हैं, मधुबन निवासी वैसा करते हैं, उनको देखने में लग जाए, उनकी गलतियां उनके क्या दुर्गुण है उसका चिंतन करने लग जाए। मधुबन में जा रहे बाबा से मिलने और ज्यादा आधा से ज्यादा समय शांतिवन के बाहर शॉपिंग में जा रहा है, मधुबन में जा रहे बाबा से मिलने और वहां जाने के बाद इससे उससे मिलना ही चालू है, इससे मिलू उससे मिलू, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, जा रहे बाबा से मिलने और साइट सीइंग में सारा समय जा रहा है, और फिर बाबा से मिल भी रहे और वहां मिलने के बाद में भी मोबाइल में बातें और ये सब चल रहे, ये सब कुछ करा के फिर वापस सेंटर पे आओ, फिर सेंटर पर यहां पर अनुभव सुनाओ, बाबा की याद में हम खो गए थे। मधुबन के ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते और हुए कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां जाके किया गया वो सब किया जो करना ही नहीं था। मौन कितना थे, एकांत में कितना थे, प्रभु प्यार में कितना डूबे हुए थे, अंतर्मुखी कितना थे वहां पर। केवल बाह्यमुखता में सारा समय चले गए, चार दिन इससे बात उससे बात, ये करूं वो करूं, कहां से अनुभव के फॉर कीपिंग चार्ट, चार्ट लिखना, चार्ट रखना, सो उन्नति का। जो लोग ये समझते हैं चार्ट न लिखे या बोरिंग लगता है, एक दूसरा काम कर सकते हैं, डायरी लिखना, अपनी दिनचर्या उसमें लिखना, आज मैं इतने बजे उठा, फिर मैंने ये किया, फिर मैं इनसे मिला, फिर मैं ये किया, फिर धीरे धीरे उसमें चार्ट इंक्लूड करते जाना, अपनी डायरी लिखना। और वो डायरी में जैसे कि हमने उसको एक लेटर बना दे, शुरुआत में बाबा कॉमा और उसको सब सुना रहे, आज जैसे भट्टी थी हम भट्टी में गए, फिर उसके बाद में वहां गए, फिर वहां से यहां गए, केवल दैनंदिनी दिनचर्या उसमें लिख देना, फिर धीरे धीरे उसमें याद का चार्ट ऐड करते जाना। यह भी एक विधि है, राइटिंग जर्नलिंग इसको कहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नलिंग, के एल एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक परमात्मा से प्यार, बस बाकी सबको बाहर कर दो। नागपुर के पुष्पारानी दीदी जी थे, वो कहा करते थे दिल में एक कुर्सी रखनी है बस, सोफा नहीं रखना, सोफे पे तीन चार लोग आके बैठ जाएंगे, एक चेयर अंदर रहे बस, कि जिसमें केवल शिव बाबा आके आराम से बैठे। यहां पर सोफा मत रख देना, सोफे में तीन चार लोग बैठेंगे। एम एम अर्थात मुरली चिंतन, सुबह मुरली चली उसका हमने कितना चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, क्या किया उस मुरली का, कितना गहराई में उसके डूबे, एक एक शब्द क्या अर्थ है, क्या भाव है, क्या है रूहानी दर्पण आज के वरदान में, कौन सा है वो चश्मा विशेषता का जो पहनना है, कहां मिलता है, कहां मिलता है, किस दुकान में मिलता है, कौन से ऑप्टिकल शॉप में मिलता है ये चश्मा, स्वयं से प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि जैसा चश्मा होगा वैसा ही दिखेगी सृष्टि। अगर अवगुण का चश्मा लगाया है और जिसके प्रति अवगुण, उसका ना तो ज्ञान ठीक लगेगा, उसका योग भी ठीक नहीं है, उसकी सेवा ये भी कोई सेवा है, इतनी अहंकारी कुछ भी ठीक नहीं लगता है उसका, न ज्ञान ठीक है उसका, न योग ठीक है, ना उसकी सेवाएं ठीक है, सब कुछ अवगुण दिखाई देते हैं, क्योंकि चश्मा ऐसा पहना है। एक गांव का किसान एक बहुत राजसी गाय को खरीद कर लाता है राजमहल से, और उसको फिर अपना चारा देता है, तो वो गाय तो खाने से मना कर देती है, क्योंकि ये सूखा चारा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे तो अच्छा चाहिए हरा हरा, क्योंकि राजसी गाय है। तो वो कहते हैं अब मैं क्या करूं, इसके लिए कहां से लाऊं, ये तो बिल्कुल मना कर देती है। तो वहां एक साधु होता है, उसके पास जाता है, क्या करूं, साधु कहता है एक चश्मा खरीद के लाओ हरा वाला। तो वो कहता है कि आज गाय धोखा खा लेगी, साधु कहता है जब मनुष्य धोखा खा लेता है तो गाय क्यों नहीं खाएगी, तो गाय के लिए हरा चश्मा लेके आता है और फिर अपना सूखा चारा रखता है, और गाय इतने मजे से खाती है, क्योंकि अब कैसा है वो हरा हरा है। तो आज का स्लोगन है ना, कौन सा चश्मा पहना है, विशेषता। तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चिंतन हमने किया या नहीं किया, अगर चिंतन होगा तो वो प्रैक्टिकल में आएगा, नहीं तो वो स्लोगन वही हमने सुना था और वही डायरी में लिखा हुआ है, वही पढ़ा है वो। उसने मूर्त रूप नहीं धारण किया। एम एन एन में नो की एक लिस्ट है जो हर एक को खुद डिसाइड करना है, नो किस बात के लिए, नो 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 नो, अपने मन को आदेश देना है नो, बाबा ने मना किया है, सिनेमा। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की किताबें, व्यर्थ का संग, फैमिलियरिटी, इंटीमेसी, दोस्ती, हर एक को अपनी व्यक्तिगत लिस्ट बनानी है किस बात के लिए नो है उसकी। उसमें बहुत सारी बातें आती है, आगे की क्लासेस में या शाम को हम देखेंगे। एन ओ उसके बाद में ओ ओ अर्थात ऑब्जर्विंग श्रीमत या ऑल मर्यादास। ऑब्जर्विंग मर्यादास। पी पी अर्थात प्रिंटिंग लिटरेचर, सेंटर इंचार्ज, सेंटर प्रभारी, सेंटर की बहन जी या जो निमित्त आत्मा है उसको बिना पूछे अपने मन से पॉम्पलेट लिटरेचर पर्चिया तैयार करना, प्रिंट करना, ये नियम नहीं है। हम उन नियमों की चर्चा कर रहे हैं जो सेंटर निवासियों के लिए है। अपने हिसाब से ये माताएं तो कम करती है, भाई लोग कहीं कहीं करते हैं, खुद ही लिटरेचर पब्लिश करते हैं और नाम ब्रह्मा कुमारीज का देते हैं, खुद ही अपनी कविताओं की किताब बनाते हैं, नाम ब्रह्मा कुमारीज का, चाहे कविता हो की या कोई भी सेवाओं की, खुद प्लानिंग बनाना, खुद पर्चिया बनाना, कोई भी प्रिंटिंग जो हो लिटरेचर, दैट शुड बी इन कंसल्टेशन। पी क्यू क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ये एक आईटी कंपनी का शब्द है, अर्थात जो भी काम हम करें, जो भी सेवा हम करें सेंटर पर, वो क्वालिटी वाली हो, ऊपर ऊपर से काम चलाओ नहीं हो, फटाफट कर दिया और चलो काम पूरा हुआ। जैसे वो दिखाते हैं कोर्स में, हमारा एक कोर्स की बुक में चित्र है ना, कि ज्ञान में नहीं है तो झगड़ रहे हैं, दिखाया ना, रोटी बेल रही है माताजी, और वो परिवार का एक चित्र है जो ज्ञान में नहीं है, फिर इधर ज्ञान में आने के बाद वाला चित्र है जो सब कुछ बाबा की याद में कर रहे हैं। तो वो माता कैसे समझाती, देखो पहले ज्ञान में नहीं थे तो रोटी खाते थे, अभी ज्ञान में है पूरी तल रहे, चलो आगे। उसमें वैसा ही दिखाया है, पूरी तलते हुए दिखाया है बहन जी को, परिवार के लोगों को, फटाफट काम करना है, ये हुआ चलो काम निभाना है बस, कारोबार, इससे क्वालिटी है। क्यू उसके बाद में आर आर अर्थात रिलेशनशिप, संबंध, आपसी संबंध। एक तरफ है मोह, एक तरफ है फैमिलियरिटी, एक तरफ है बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, दूसरी तरफ है नफरत घृणा शत्रुता, ये दोनों ही चीजें ना हो, बीच का न्यूट्रल, किसी को विशेष भाई बना देना, बहन बना देना, मां बना देना, पिता बना देना, नए संबंध रचना, दोस्त ही बना देना किसी को, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप गिराने का मार्ग है। भाई को भाई रहने दो और बहन को बहन ही रहने दो। कल की मुरली साकार, लास्ट पैराग्राफ। राखी अर्थात कोई बांधने की चीज नहीं है, प्रतिज्ञा है पवित्रता के, कोई धागे से इसका कोई संबंध नहीं है, प्योरिटी से संबंध है। तो आर अर्थात रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, रिलेशनशिप में प्योरिटी, रिलेशनशिप में लव, और दो आत्माओं के बीच ज्ञान की कटार हो, और मुख्य रूप से अगर उसमें से एक ब्रह्मा कुमार है और एक ब्रह्मा कुमारी है, तो नहीं तो चाहे कितना भी पक्का ब्रह्मा कुमार और कितनी भी पक्की ब्रह्मा कुमारी हो, यदि बीच में से ज्ञान कटार निकल गई तो काम कटार चलेगी। इसके लिए सभी संबंधों में डिटैचमेंट हो, सब मेरे हैं, कोई एक में मोह नहीं। अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। मोह को क्या करना है? सार्वजनिक, यूनिवर्सल, सबके लिए समान। उसके बाद में एस, एस फॉर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। दिनचर्या में कुछ ऐसा समय हो जिसमें हम मौन में रहे और एकांत में रहे, क्योंकि तपस्या एकांत में होती है, शोरगुल में नहीं, आवाज में नहीं। सेल्फ चेकिंग एकांत में होती है। एस, एस के बाद में टी, टी अर्थात ट्रस्टीशिप। घर में रहते हुए ऐसे कि जैसे मैं ट्रस्टी हूं, जैसे बैंक में काम करने वाला व्यक्ति, पैसे आ रहे, लाखों आ रहे, लाखों जा रहे, उसे कोई खुशी नहीं है उसकी, वैसे ही ये सब शुभाभक है, घर उसी का है, ये बच्चे, ये सब कुछ, ये वस्तुएं, सब कुछ उसका है, जो भी पैसे आ रहे वो सब उसको दो और फिर लो उससे यूज करने के लिए। उसके बाद में यू, यू अर्थात यूटिलाइजिंग टाइम एंड रिसोर्सेस वर्थफुली। जो भी साधन सुख सुविधा के या यज्ञ से या यज्ञ में हम रहते हैं, उसके जो भी साधन है उनको यथार्थ रीति से प्रयोग करना है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फूड, पता नहीं क्या है बना हुआ, ले लिया मधुबन में जाके, हम देखते कितना फूड वेस्ट करते हैं लोग। जो पार्टियों में लोग आते हैं, भर भर के चाय लेते हैं, आधा पीते हैं और रख देते हैं और चल दिए। चाय, कॉफी, इतना सारा ले लेते हैं थाली में, डर रहता है कहीं खत्म ना हो जाए, और दो और दो और दो, और फिर टेस्ट करते पसंद नहीं आए छोड़ दिया, वेस्ट। होटल में एक प्लेट कितने की आती है, जिनको पता है वो कभी वेस्ट नहीं करेंगे। और यज्ञ का एक एक कणा मोहर की तरह है। 16th February 1988, अव्यक्त मुरली, ये ब्रह्मा भोजन है। यज्ञ के वत्सों को ब्रह्मा भोजन की कदर करनी है। एक एक दाना मोहर के समान है, ये दुआ और दवा दोनों का काम करता है। कितना हमें महत्व है इस भोजन का, वेस्ट तो नहीं कर रहे। अगर पता है ये मैं नहीं खाऊंगा, लेना ही नहीं है। अगर पता है ये नई चीज है, थोड़ा सा लो बिल्कुल, चाहे यहां या फिर मधुबन में, मुख्य रूप से मधुबन में, बिल्कुल थोड़ा सा लेना। हम रोज देखते हैं वो कितना फूड वहां वेस्ट करते हैं, सब पार्टियों में आए हुए लोग, थोड़ा सा लिया और फेंक दिया, थोड़ा सा लिया और फेंक दिया। जगदीश भाई एक ऐसे व्यक्ति थे इस यज्ञ में कि जिन्होंने यज्ञ का कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं किया अपने लिए। इस यज्ञ का कम से कम खर्चा हम पर हो, यज्ञ अर्थात जहां हम रहते वो भी यज्ञ ही है, अपने घर को ही यज्ञ समझना। हमको याद है 2005 में हम यहां से पहले तो मधुबन में थे, और वहां से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर निकले। 2003 में मधुबन में आए, 2005 में बाहर निकले, महाराष्ट्र में पहले मीरज और फिर मुंबई। एक संकल्प लेके बाहर निकले थे कि मैं यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं क्या स्वाहा करूं इसमें, मैं खुद ही स्वाहा कर रहा हूं स्वयं को। और इस संकल्प से निकलेंगे थे कि जो जो मेरी मदद करेगा, जब मैं बाहर रहूंगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा। यह समझना कि मैं ही मूर्तिमंत यज्ञ हूं, मेरा जीवन यज्ञ के लिए है, मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, मेरा सर्वस्व यज्ञ के लिए है। उसके बाद कहां थे, एस वी वी अर्थात विजिट टू अदर सेंटर। इस सेंटर को छोड़ के हम जब दूसरे सेंटर पर जा रहे हैं रहने के लिए, लेटर लेकर जाना है। ऑर्डर बता कर जाना है, कहीं पर भी जाकर कहीं पर भी रहना ये यज्ञ के नियम नहीं है। वी वी के बाद में डब्लू, ये तो पता है सबको, वॉश आफ्टर बॉवेल मूवमेंट्स, स्नान करना। और इस नियम को हम देखते हैं हॉस्पिटल में, कई लोग कई बार एडमिट होते हैं लूज मोशंस के साथ ब्राह्मण, पर इस नियम को तब भी जारी रखते हैं। हम देखते हैं बहुत बूढ़े बूढ़े यज्ञ के, जो अनन्य भाई है पुराने पुराने मधुबन निवासी 90 साल 80, पर इस नियम के लिए बहुत पक्के हैं। तो वॉश, उसके बाद में एक्स एक्स अर्थात एक्सरे, अर्थात दो बार एक्सरे करना है खुद का, सेल्फ चेकिंग, सुबह शाम रात को सोते समय, हो सके तो 3 बार और फिर कई बार। वाय वाय अर्थात योगा, योग ट्वाइस अ डे ऑफिशियल, अमृत वेला और नुमा शाम का योग। और लास्ट है जेड, जेड अर्थात झील एंड एंथुजियाज्म। कल का या परसों का स्लोगन क्या था, नस में क्या हो, कौन सा खून हो, कौन से नस में, संकल्प रूपी नस में कौन सा खून हो, उमंग उत्साह का। दादी की उम्र कितनी है और अभी भी उनको देखो कितना उमंग उत्साह है सेवाओं का, ये करूं वो करूं वो करूं, और बढ़ी रहा है उमंग उत्साह। शरीर बूढ़ा हो रहा है और आत्मा जवान हो रही है। तो ऐसे ए से लेकर जेड तक ये सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं, इसके अंदर रहना, इसको पार किया तो सीता उधर। तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, सभी योग में बैठेंगे और मन ही मन ये सारे नियम मर्यादाएं ए से लेकर जेड तक 26 मन ही मन रिवाइज करेंगे।